नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को लेकर गया स्पेस एक्स ड्रैगन यान अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस से सफलतापूर्वक जुड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, आपातकाल का दौर भूलने का नहीं बल्कि संघर्ष की दास्तां का प्रतीक। जोधपुर में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को संबोधित किया। सीबीईसी ने राज्य सरकार को 6,315 करोड़ रुपए के पेट्रोलियम सर्विस टैक्स प्रकरण में राहत दी। और प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां जारी, श्रीगंगानगर में सीजन की पहली तेज बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में लेकर गया स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस से जुड़ गया है। इसके साथ ही 41 साल बाद अंतरिक्ष में भारत का कोई अंतरिक्ष यात्री पहुंचा है। ये ऐतिहासिक मिशन अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केन्द्र में 14 दिनों के वैज्ञानिक अभियान के लिए लेकर गया है। एक्सियम 4 मिशन न केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि है बल्कि वैश्विक प्रौद्योगिकी महाशक्ति के रूप में भारत के बढ़ते कद का भी प्रमाण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए एक्सियम 4 मिशन टीम को बधाई दी है। मिशन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसका दुनिया भर में भविष्य के सभी अभियानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आपातकाल का दौर भूलने का विषय नहीं बल्कि संघर्ष की दास्तां का प्रतीक है। आज जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार को जब कभी भी सेनानियों के सम्मान का अवसर मिलता है वो इस कार्य में आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाती है। जोधपुर दौरे पर गए मुख्यमंत्री ने इससे पहले जोधपुर आईआईटी के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 4वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने कहा कि बीते 11 सालों में देश का समर्पित भाव से आधुनिक विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो विद्यार्थी डिग्री हासिल कर निकले हैं वे कल भारत का भविष्य लिखेंगे।
ये युवा शक्ति है, भारत 2047 के सपने को साकार करने में आप अग्रणी भूमिका निभाएंगे। ये विद्यार्थियों, मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपने जो ज्ञान और कौशल अर्जित किया है वह आपके खुद के साथ ही देश और प्रदेश के भविष्य को भी आकार देने में आपको सक्षम बनाएगा। और मुझे भरोसा है कि आप जैसे मेधावी युवा अपने ज्ञान और विशेषज्ञता का उपयोग देश और प्रदेश के विकास के लिए करेंगे।
समारोह में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की और मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक वितरित किए। कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई और स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित शिक्षक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन मादक पदार्थों के उपयोग और उनकी अवैध तस्करी के विरोध में आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि अब तक देश भर में 14 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि 4 लाख से ज्यादा शैक्षणिक संस्थान भी इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं।
जो उनके लिए सही दिशा कैसे मिले, नशा मुक्ति अभियान से जुड़ करके कैसे उनको हमारे, आपने नुक्कड़ नाटक भी देखे होंगे, नाटक के माध्यम से तरह तरह से लगातार हमारे चाहे नशा मुक्ति केंद्र है, इन माध्यमों से हम हमारा मंत्रालय तरह तरह से स्कीम चला करके शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अलग अलग तरीके से हम जो प्रयास काम कर रहे हैं हम निश्चित उस पर काबू भी पाएंगे।
अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में रखा गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि समाज को नशा मुक्त रखने की जिम्मेदारी सरकार और संस्थाओं की ही नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति की भी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता लाने और नशे की गिरफ्त में जकड़े लोगों को बाहर निकालने का संकल्प लेना होगा। सामाजिक न्याय मंत्री ने बताया कि प्रदेश में इस साल के बजट में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और बाड़मेर सहित 10 जिलों में 25-25 बेड क्षमता के नशा मुक्ति केन्द्र शुरू किए गए हैं। इस बीच प्रदेश भर में नशा मुक्ति पखवाड़े के तहत आज भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। जैसलमेर में बीएसएफ की ओर से सीमांत गांव बाहला में कार्यक्रम रखा गया। इसमें बीएसएफ अधिकारियों ने ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। पाली में चिकित्सा विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बांगड़ अस्पताल में कार्यक्रम रखा गया। कोटपूतली बहरोड जिले में भी कार्यशाला हुई, साथ ही रैली के माध्यम से लोगों को नशे के नुकसान समझाए गए। डीग में समाज कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर नशा छोड़ चुके युवाओं को प्रोत्साहित किया गया। डीग के समाज कल्याण अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि अभियान को भरपूर समर्थन मिल रहा है।
भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान का उद्देश्य है कि जो युवा हैं हमारे, क्योंकि किसी भी देश की सबसे बहुमूल्य संसाधन है तो वो उस देश के युवा हैं, तो उन युवाओं में जो नशे की लत है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि युवा कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार गलत संगति कारण नशा करने लग गए हैं, तो उन युवाओं को नशा मुक्त करना है। युवा तो हमारे प्रथम टारगेट है। उसके बाद में कोई भी नागरिक, चाहे वृद्ध है या कोई भी है, जो भी नशा करते हैं कोई भी व्यक्ति, उसको नशा मुक्त कराना तथा नशे के खिलाफ जागरूकता पैदा करना है, जिससे कि हमारा देश नशा मुक्त बने।
भरतपुर में बाल अधिकारिता विभाग की ओर से ई साइकिल रैली निकाली गई। श्रीगंगानगर में एनसीसी की 15वीं राज बटालियन की ओर से रैली आयोजित की गई। राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नई दिल्ली स्थित नौसेना भवन से एक यूडीसी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीआईडी के सुरक्षा महानिरीक्षक विष्णुकांत गुप्ता ने बताया कि हरियाणा के रेवाड़ी निवासी आरोपी पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को सामरिक महत्व से जुड़ी खबरें भेजने का आरोप था। आरोपी यूडीसी नौसेना भवन में डायरेक्टरेट ऑफ डॉकयार्ड में नियुक्त था और सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला हैंडलर से लगातार संपर्क में था। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वो महिला के इशारे पर काम कर रहा था। आरोपी के मोबाइल से मिली सूचना से पता चला है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी गोपनीय सूचनाएं महिला पाक हैंडलर को उपलब्ध करवाई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कस्टम एक्साइज और सेवा कर अपील अधिकरण CBEC ने राज्य के पेट्रोलियम विभाग को सर्विस टैक्स के 6,315 करोड़ रुपए के प्रकरण में राहत देते हुए CGST जोधपुर के पूर्व फैसले को अस्वीकृत कर दिया है। पेट्रोलियम और खान विभाग के सचिव टी रविकांत ने बताया कि विभाग ने मामले की तत्परता से पैरवी करते हुए राज्य सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय अपील अधिकरण ने राज्य सरकार के पक्ष को स्वीकार करते हुए 20 जून को जारी मार्गदर्शिका में कहा कि खनन अधिकार सहायक सेवाएं नहीं हैं तथा इन सेवाओं को नकारात्मक सूची के अंतर्गत छूट प्राप्त है। गौरतलब है कि CGST जोधपुर ने प्रदेश में तेल, खनिज तेल उत्खनन से प्राप्त रॉयल्टी को अचल संपत्ति के किराए के रूप में मानते हुए राज्य सरकार को 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए 16,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेनल्टी और सर्विस टैक्स जमा कराने को कहा था, जिस पर राज्य सरकार ने CBEC में अपील दायर की थी। प्रदेश में साइबर धोखाधड़ी से निपटने और डिजिटल अपराधों पर अंकुश के लिए सभी पुलिस थानों में अब साइबर हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। राजस्थान पुलिस ने डिजिटलीकरण के दौर में बढ़ते साइबर खतरों से निपटने के लिए ये पहल की है। पुलिस महानिदेशक शरद कविराज ने बताया कि लोगों की शिकायत और सूचना के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर सेवा भी शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि साइबर हेल्प डेस्क के जरिए साइबर वित्तीय धोखाधड़ी, सोशल मीडिया से संबंधित अपराध सहित किसी भी साइबर समस्या पर शिकायत दर्ज की जा सकेगी। इसके अलावा किसी भी संदिग्ध मोबाइल नंबर को ब्लॉक करवाने में भी आमजन की मदद की जाएगी। सेवा का उपयोग मोबाइल फोन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने में भी किया जा सकेगा। सीबीआई ने साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के मामलों से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों के क्रम में साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए जा रहे म्यूल बैंक खातों के संबंध में राजस्थान सहित 5 राज्यों में 42 स्थानों पर देशव्यापी तलाशी शुरू की है। म्यूल खाता वो बैंक खाता है जिसका उपयोग अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। एजेंसी ने बताया कि तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य सहित लेन देन विवरण केवाईसी दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां बनी हुई हैं। मॉनसून ने आज आगे बढ़ते हुए उत्तरी और सरहदी जिलों को भी तरबतर कर दिया। श्रीगंगानगर जिले में आज इस सीजन की पहली तेज बरसात हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के साधुलशहर और सूरतगढ़ में हुई तेज बरसात से निचले इलाकों में पानी भर गया।
आज सुबह से ही जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में शुरू हुआ रिमझिम बरसात का दौर इलाका वासियों के लिए राहत भरा रहा। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को बरसात के चलते काफी राहत मिली। जिला मुख्यालय के अलावा साधुलशहर और सूरतगढ़ क्षेत्र में भी अच्छी बरसात हुई। सूरतगढ़ में पहली तेज बरसात के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए। बरसात के चलते न केवल आमजन को राहत मिली बल्कि खेतों में गर्मी के कारण झुलस रही फसलों को भी नया जीवनदान मिला है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार।
मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों में उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में बहुत भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। बीकानेर और जोधपुर संभाग के साथ पश्चिमी जिलों में कल से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आज सुबह राजस्थान के पर्यटकों को ले जा रही मिनी बस खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। दुर्घटना में 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक प्रहलाद कौंडे ने बताया कि बस में कुल 20 लोग सवार थे जिनमें से 8 व्यक्तियों को बचा लिया गया है। इस दुर्घटना पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत प्रदेश के बुजुर्ग अब अटारी बॉर्डर का भी भ्रमण कर सकेंगे। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने ये जानकारी दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को लेकर गया स्पेस एक्स ड्रैगन यान अंतरिक्ष स्टेशन ISS से सफलतापूर्वक जुड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, आपातकाल का दौर भूलने का नहीं बल्कि संघर्ष की दास्तां का प्रतीक। जोधपुर में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को संबोधित किया। CBEC ने राज्य सरकार को 6,315 करोड़ रुपए के पेट्रोलियम सर्विस टैक्स प्रकरण में राहत दी। और प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां जारी। श्रीगंगानगर में सीजन की पहली तेज बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।